लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है चालीसा के चौथे रविवार हेतु संत पापा फ्रांसिस का संदेश, कार्डिनल रेनी फिसिकेला का प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने चालीसा के चौथे रविवार हेतु अपने संदेश में कहा, फरीसी यीशु के पीछे पापियों को आता हुआ देखकर खुश होने के बदले निंदा में भुनभुनाते हैं, अतः यीशु उन्हें एक पिता और उसके दो पुत्रों के बारे में बतलाते हैं। एक अपने पिता के घर को छोड़कर दूर चला जाता है, लेकिन अपनी सारी धन संपत्ति के समाप्त होने पर वह पुनः अपने पिता के घर में पश्चातापी हृदय से लौटकर आता और उसका स्वागत खुशी में किया जाता है। वहीं दूसरा आज्ञाकारी बेटा इन सारी बातों को देखकर क्रुद्ध हो जाता और घर में प्रवेश करना, समारोह में शामिल होना नहीं चाहता है। संत पापा ने कहा कि इस तरह यीशु हमारे लिए अपने पिता ईश्वर के हृदय को व्यक्त करते हैं। वे हम सबों के प्रति दयालु हैं। वे हमारे घावों की चंगाई करते हैं, जिससे हम एक दूसरे को भाई बहनों की तरह प्रेम कर सकें। संत पापा ने अपने देवदूत संदेश में लिखा, प्रिय मित्रों, हम इस चालीसा काल के समय को चंगाई के रूप में जिए। यह हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपने को जयंती वर्ष में पाते हैं। मैं भी इससे अपने में, अपने शरीर और आत्मा में अनुभव कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैं उन सबों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव अर्पित करता हूँ, जो बचाने वालों के रूप में अपने शब्दों और ज्ञान के द्वारा, अपनी कोमलता और प्रार्थना के माध्यम पड़ोसियों की चंगाई के साधन बनते हैं। कमजोरी और बीमारी को हम अपने में अनुभव करते हैं, यद्यपि उससे भी बढ़कर हम ख्रिस्त में मिली मुक्ति के अनुरूप अपने में एक दूसरे के भाई बहन समान हैं। अपने छोटे संदेश के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के युद्ध प्रभावित देशों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि पिता ईश्वर की करुणा में भरोसा करते हुए हम शांति के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। शहीद यूक्रेन के लिए, फिलिस्तीन, इसराइल, लेबनान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और म्यांमार के लिए, जो हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित है। संत पापा ने दक्षिणी सूडान की स्थिति को लेकर अपनी चिंता जताई। मैं सभी नेताओं से विनयपूर्वक आग्रह करता हूं कि वे देश में तनाव दूर करने की हर संभव कोशिश करें। हम अपने बीच से उदासीनता को दूर करें और साहस तथा उत्तरदायित्व में एक साथ जमा होते हुए अपने में वार्ता को बढ़ावा दें। केवल ऐसा करने के द्वारा ही हम प्रिय सूडान वासियों की पीड़ा को कम करने तथा शांति और स्थिरता के भविष्य का निर्माण करने में संभव होंगे। उन्होंने सूडान की स्थिति के बारे में कहा कि देश में युद्ध की निरंतरता के कारण निर्दोषों को शिकार होना पड़ रहा है। संत पापा ने युद्ध में संलग्न दलों से निवेदन किया कि वे सबसे पहले अपने नागरिकों, भाइयों एवं बहनों के जीवन की सुरक्षा निश्चित करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जल्द ही नई वार्ता शुरू होगी, जिससे संकट का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे इस भयावह मानवीय आपदा से निपटने के लिए अपने प्रयास को बढ़ाएं। इसके साथ ही संत पापा कुछ सकारात्मक घटनाओं के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। उदाहरण के लिए, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच सीमा के सीमाकरण पर समझौता का समर्थन, जो अपने में एक उत्कृष्ट कूटनीति उपलब्धि है। मैं दोनों देशों को इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अपने संदेश के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने सबों को माता मरियम के हाथों में सुपुर्द करते हुए कहा कि वे मानव परिवार को शांति मेल मिलाप में बने रहने हेतु मदद करें।
दूर से आया दास तुम्हारा, दास को अपनी शरण में रख लो। दूर से आया दास तुम्हारा, दास को अपनी शरण में रख लो। चरण तुम्हारे सबसे पावन, विनती है अब चरण में रख लो। दूर से आया दास तुम्हारा, दास को अपनी चरण में रख लो।
उधर 30 मार्च को करुणा के प्रेरितों ने अपनी जयंती मनाई। इस उपलक्ष में सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम धर्म पीठ के प्रो अध्यक्ष कार्डिनल रिनो फिसिकेला ने करुणा के प्रेरितों के लिए रोम के संत आंद्रेस महागिरजा घर में ख्रिस्तियाग अर्पित किया। अपने प्रवचन में कार्डिनल फिसिकेला ने कहा कि संत लूकस के सुसमाचार में उड़ाव पुत्र का दृष्टांत नए विधान और साहित्य की दृष्टिकोण से अपने में एक अति सुंदर कहानी है। इस दृष्टांत के माध्यम यीशु मानव के लिए अपने पिता ईश्वर के महत्वपूर्ण प्रेम को प्रकट करते हैं। ये दोनों पुत्र पिता के प्रेम और दया को व्यक्त करने हेतु उपयोग किए गए हैं। हम अपने को दोनों संतानों की तरह ही पाते हैं। हम अपने संस्कृति के अनुसार अपने में स्वतंत्र रहने की चाह रखते और उन चीजों को करना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। ईश्वर पिता के घर से कलिस्सा से बाहर हम अपने को उद्देश्यहीन क्षण भंगुर की चीजों में भटकता हुआ पाते हैं। कार्डिनल रिनो फिसिकेला ने कहा कि दूसरा भाई जो बहुत हद तक हम सबों की तरह है अपने भाई की वापसी पर क्रोधित हो जाता है। उसके द्वारा कहे गए शब्दों में हम इसका अनुभव करते हैं। देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। अपनी निष्ठामय सेवा के बदले में हम कुछ चीजों की मांग करते हैं। पाप जो इस व्यवहार में छुपा हुआ है उसे हम पिता के उत्तर में स्पष्ट पाते हैं। बेटा, तुम सदा मेरे साथ रहे, जो मेरा है वह तुम्हारा है। वास्तव में हम ईश्वर के खुलेपन को नहीं समझ पाते हैं। हम पुरोहितों के लिए, विशेषकर जब हम अपनी प्रेरिताई को लेकर आदि हो जाते तो सारी चीजें हमारे लिए दिनचर्या सी हो जाती हैं। प्रेरिताई की पवित्रता को चाहिए कि वह हमें ईश्वर के संग और निकटता से संयुक्त रखे, हमें उनके प्रेम को पहचानने में मदद करे। लेकिन ऐसा होने के बदले हम ईश्वर के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। यदि हम इस कृपा को पहचान पाते जो हमारे रोज दिन के जीवन में ईश्वर से मिली है, जो मेरा है वह तुम्हारा है, तो पुरोहितों के रूप में हमारा जीवन पिता के प्रेम को प्रकट करता है। कार्डिनल फिसिकेला ने कहा कि पिता अपने बेटे से मिलने को दौड़ पड़ते हैं। यह व्यवहार एक पुरोहित के लिए जरूरी है। पुत्र ने गलती की, लेकिन वह अनुभव करता है कि अपने घर से, अपने पिता और परिवार से दूर उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। पिता में प्रेम का आलिंगन हमारे लिए इस बात को व्यक्त करता है कि प्रेम किस तरह पापों को क्षमा कर देता है। यह प्रेम है जो हमें भविष्य की ओर अपने निगाहें उठाकर देखने में मदद करता है, जहां हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की चाह रखते हैं। पिता का दूसरे पुत्र के लिए धैर्य को हम उनकी पहल में पाते हैं, जहां वह उससे मिलने को जाते हैं। वे उसे गाली नहीं देते, बल्कि उससे निवेदन करते हैं, मांग से बढ़कर एक दूसरी चीज के लिए, तुम्हारा यह भाई जो मर गया था जी गया है, जो खो गया था मिल गया है। ज्येष्ठ पुत्र पिता के प्रेम में जीवन को परिवर्तन होने का अनुभव करता है। क्षमा नया जीवन प्रदान करता है। शामिल होना उदारता के फल को प्रकट करता है जो हमें दिया गया है, कार्डिनल ने कहा। दोनों भाइयों को चाहिए कि वे एक पिता के पुत्र होने की बात को अनुभव करें और एक साथ पिता के घर में लौटें। केवल एक साथ मिलन में हम पिता के महान प्रेम को प्रकट होता पाते हैं। कोई भी पिता के घर से बाहर नहीं रह सकता है। यह पिता के प्रेम का परित्याग और अर्थहीन जीवन होगा। करुणा के प्रेरित गण, कार्डिनल फिसिकेला ने कहा कि आप मेल मिलाप के एक विशेष साधन हैं। यह दृष्टांत हमें ईश्वर के प्रेम की थाह लेने में मदद करता है। यह प्रेम हमारे प्रेम करने से कितना अलग है। हमें इसे अपने हृदय की गहराई में स्वागत करने की जरूरत है, जो हमें ईश्वर की ओर आने और उनसे मेल मिलाप करने के रहस्य को समझने में मदद करता है। उन्होंने कहा, यूखरिस्त हमारे लिए क्षमा का एक स्रोत है। यह पिता की ओर से निर्धारित समारोह है। हम इस बात को ना भूलें कि इसमें पूर्ण मेल मिलाप होता है, क्योंकि इसमें हम ख्रिस्त के बलिदान को पाते हैं।
दूर से आया दास तुम्हारा, दास को अपनी शरण में रख लो। दूर से आया दास तुम्हारा, दास को अपनी शरण में रख लो। चरण तुम्हारे सबसे पावन, विनती है अब चरण में रख लो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार या देवदूत प्रार्थना के लिए तैयार संदेश में चालीसा के चौथे रविवार के लिए निर्धारित संत लूकस के सुसमाचार से लिए गए उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में पिता ईश्वर के मनोभाव पर प्रकाश डाला और उद्धारकर्ता का अनुसरण करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने युद्धरत देशों यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, लेबनान, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार, सूडान और दक्षिण सूडान के लिए प्रार्थना करने की अपील को दोहराया। इसी के मद्देनजर संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर 5 संदेश लिखा। पहले संदेश में संत पापा ने लिखा, संत लूकस के सुसमाचार में यीशु हमें परमेश्वर का हृदय दिखाते हैं, जो हमेशा सभी के प्रति दयालु रहते हैं। वे हमारे घावों को भर देते हैं ताकि हम एक दूसरे को भाई और बहनों की तरह प्यार कर सकें। दूसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, आइए हम चालीसा को स्वास्थ्य लाभ के समय के रूप में जिए। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उद्धारकर्ता का अनुसरण करते हैं और अपने शब्दों, ज्ञान, स्नेह और प्रार्थना से अपने पड़ोसियों को ठीक करते हैं। तीसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, परमेश्वर पिता की दया पर भरोसा करते हुए आइए हम शहीद यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, लेबनान, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और म्यांमार में शांति के लिए प्रार्थना करना जारी रखें, जो भूकंप के कारण बहुत पीड़ित हैं। चौथे संदेश में संत पापा ने लिखा, मैं दक्षिण सूडान की स्थिति पर चिंता के साथ नजर रख रहा हूँ। मैं सभी नेताओं से देश में तनाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी हार्दिक अपील को दोहराता हूँ। और अंतिम संदेश में संत पापा ने लिखा, सूडान में युद्ध निर्दोष पीड़ितों को अपना शिकार बना रहा है। मैं संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से अपने नागरिक भाइयों और बहनों के जीवन की रक्षा करने का आग्रह करता हूँ। मुझे आशा है कि नई वार्ता यथाशीघ्र शुरू होगी और इससे संकट का स्थायी समाधान निकल पाएगा। और वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर ने 27 से 30 मार्च तक हंगरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई बैठकों में विश्वास के शब्द कहे और शांति का आह्वान किया, संत पापा फ्रांसिस का अभिवादन और आशीर्वाद दिया। उन्होंने 1930 से 1945 तक बुदापेस्ट के दिवंगत प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष अंजेलो रोटा की मृत्यु की 60वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव में भाग लिया। जिनका 1965 में निधन हो गया और होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को बचाने के उनके प्रयासों के लिए याद वाशेम द्वारा उन्हें राष्ट्रों के बीच न्यायपरायण के रूप में मान्यता दी गई। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने हंगरी के राजदूतों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और बाद में महाधर्माध्यक्ष रोटा की मृत्यु के स्मरणोत्सव के प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने रेखांकित किया कि वैश्विक मामलों में इस निर्णायक क्षण में परम धर्मपीठ राष्ट्रों के बीच शांति, न्याय और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सशस्त्र शत्रुताएं जो हम देख रहे हैं, चाहे वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो, इसराइल हमास का टकराव हो, सीरिया, लेबनान और यमन को शामिल करते हुए मध्य पूर्व में संघर्ष और अशांति हो, या कोंगो, सूडान, साहेल में लोकतांत्रिक गणराज्य सहित अफ्रीका के क्षेत्रों में निरंतर हिंसा हो, या दुनिया भर में संकट हो, न केवल भू राजनीतिक चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि विनाशकारी मानवीय संकट भी है जिनके लिए तत्काल और व्यापक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, इस पवित्र अवसर पर महाधर्माध्यक्ष एंजेलो रोटा का ज्वलंत उदाहरण हमें पीड़ितों और सताए गए लोगों की अडिग रक्षा में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित करता है, जिसे हमारे प्रभु ने हमें शांति की रक्षा का पवित्र दायित्व सौंपा है, जो एक ऐसा खजाना है जिसे अथाह निष्ठा के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। अंतिम दिन 30 मार्च को उन्होंने बुद्धापेस्ट में संत स्टीफन महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया। वहां उन्होंने संत पापा फ्रांसिस का अभिवादन दिया और उनकी आध्यात्मिक निकटता और अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया। उधर पेरिस में आयोजित होने वाले यूरोपीय प्रसारण संघ EBU की 31वीं रेडियो असेंबली में कुल 33 यूरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व होगा। 3 और 4 अप्रैल के कार्यक्रम में पुराने महाद्वीप के सार्वजनिक रेडियो क्षेत्र की वर्तमान मुख्य चुनौतियों का जायजा लिया जाएगा तथा रेडियो के भविष्य के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। रेडियो फ्रांस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों में वाटिकन रेडियो भी शामिल होगा, जिसका प्रतिनिधित्व वाटिकन मीडिया के उप संपादकीय निदेशक अलेसांद्रो जिसोत्ती करेंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी निकोलस हेसोम ने दक्षिण सूडान की स्थिति को भयानक बताया और राष्ट्रपति सल्वा कीर और उपराष्ट्रपति रीक मचर से अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठने और अपने लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। दक्षिण सूडान ने कई वर्षों के संघर्ष के बाद 2011 में सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन जातीय विभाजन ने देश को 2013 में गृह युद्ध में धकेल दिया। इस बीच सूडान में सेना ने खार्तूम में राष्ट्रपति महल पर फिर से कब्जा कर लिया, जो चल रहे गृह युद्ध में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत थी। सूडान के सूचना मंत्री खालिद ने सेना की सफलता की पुष्टि करते हुए कहा कि झंडा फहराया गया है, महल वापस आ गया है और जीत पूरी होने तक यात्रा जारी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी के प्रमुख ने सूडान में संघर्ष को दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया है। हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और अकाल ने कुछ परिवारों को जीवित रहने के लिए घास खाने पर मजबूर कर दिया है। यह संकट 2019 में लंबे समय से निरंकुश राष्ट्रपति उमर अल बशीर को हटाए जाने के बाद वर्षों की अस्थिरता से उपजा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।